श्रीमद् भागवत को पुराण सम्राट कहा गया, ये पुराण सम्राट है। पादम ब्राह्म गृहीत चामर युग वाराह संवीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमद वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो श्रीमद भागवता विधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। पुराण सम्राट श्रीमद भागवत जी की जय हो, इन्हीं की विजय होती है। बड़ी दिव्य झांकी है, जैसे किसी महाराजाधिराज की दरबार में दिव्य मणिमय सिंहासन पर झांकी होती है, ऐसे ही ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत दिव्य रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। पद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये दोनों चमर लेकर के चमर ढोरा रहे हैं। राजा की सेवा में छत्र चमर छड़ी लेकर खड़े होते हैं, ये सब पुराण श्रीमद् भागवत जी की सेवा में छड़ी छत्र चमर लेके खड़े। पद्म ब्राह्म गृहीत चामर युगा वाराह संवीजिता, वाराह पुराण विजन ढुरा रहे। ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते, ब्रह्मांड पुराण छत्र लेकर खड़े हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और जितने पुराण हैं और भी जितने उप पुराण हैं, स्मृतियां हैं, वे सब स्कंदादि भी संस्तुता, स्कंद शब्द से आदि, आदि से सबका ग्रहण हो जाएगा, पुराणों पर पुराण सबका, वे सब स्तवन कर रहे हैं। ये तो इनकी झांकी है दरबार की, और दरबार किन लोगों से सुशोभित है? श्रीमद वैष्णव सेवितानुगमना, ये वैष्णवों के द्वारा सेवित हैं और यही इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। भागवत के प्रकाश में ही भागवत वैष्णव जन वे भगवत प्राप्ति के पथ पर चलते हैं, भागवत के प्रकाश में भगवत प्राप्ति के पथ पर चलते हैं, ये अनुगमना है। और संपूर्ण इष्ट सिद्धि को देने वाले यह पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण है। इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की प्रत्यक्ष शब्दमयी प्रतिमा है। भगवान स्वयं अनुग्रह करके हृदय में विराजमान होकर के अपना स्वरूप जो श्रीमद् भागवत है उसका प्रकाशन करें, ये वस्तुतः भगवान की ही सामर्थ्य है। किसी जीव की श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ के संबंध में एक शब्द कहने की पात्रता नहीं, भगवान ही कृपा करके हृदय में विराजमान होकर के इस दास से अपनी वाङ्मयी सेवा को करा करके प्रसन्न हुए। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण किया गया, सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। ये परम सत्य कौन है? भगवान ही परम सत्य हैं। उन भगवान का ही ध्यान किया गया, यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इस मंगलाचरण के विभिन्न अर्थ किए और पंडित बंशीधर जी ने अकेले ही 100 प्रकार के अर्थ इस पद्य के प्रस्तुत किए, तो किसी को भ्रम न हो जाए कि मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया। शूज परक अर्थ भी है, देवी परक अर्थ भी है, गणेश परक अर्थ भी है, शिव परक अर्थ भी है, कहां तक कहें तुलसी परक, रुद्राक्ष परक, भस्म परक अर्थ तक है, बहुत अर्थ किए गए। लेकिन यह केवल विद्वानों का वैदुष्य ही है, वस्तुतः श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान किया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि है और श्रीमद् भागवत के उपसंहार में भागवत की परंपरा का स्मरण है, गुरु परंपरा का, और उस गुरु परंपरा के स्मरण में भी तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि, वहां भी सत्यम परम धीमहि, वहां श्रीमद् भागवत को परम सत्य कह करके ध्यान किया गया है। तो आदि अंत में सत्यम परम धीमहि है, और इसमें किसी विशेष देवता का नाम नहीं लिया गया, राम कृष्ण नारायण का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया, इसलिए लोगों को अवसर मिल गया। लेकिन यह संदेह उस समय निराकृत हो जाता है, उस समय यह संदेह समाप्त हो जाता है जब हम गर्भस्तुति के प्रकरण में भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण करते हैं। गर्भस्तुति के प्रकरण में ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस गर्भस्तुति के प्रकरण में किसी को कोई संदेह है? किसी को संदेह नहीं। गर्भ में भगवान विराजमान है और गर्भगत भगवान की देवता स्तुति कर रहे हैं, और वह भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो सत्य शब्द का पुनः पुनः आवर्तन करके, यह प्रमाणित करने के लिए कि भगवान के अतिरिक्त दूसरी किसी सत्ता को सत्य मानना अपराध है, भगवान ही परम सत्य हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम, सत्य की भी योनि है, अर्थात सत्य प्रकट ही इनसे हुआ है, सत्य के भी सत्य हैं, सत्य ही इनकी आत्मा है, सत्य ही इनका स्वरूप है। ऐसे हे सत्यात्मक श्री कृष्ण, हम सब देवता आपकी शरण में हैं। अब गर्भस्तुति के प्रकरण में तो किसी को संदेह नहीं है, तो जिन श्री कृष्ण को बार बार सत्य कह करके देवता शरणागति की प्रार्थना करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण का ग्रंथ के आदि में भी सत्यम परम धीमहि कहकर स्मरण किया गया, और ग्रंथ के अंत में भी सत्यम परम धीमहि कहकर उन्हीं भगवान का स्मरण किया गया। तब आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान करना पड़ा केवल इतनी सी बात समझने के लिए कि सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान का ही ध्यान किया गया, श्री रामकृष्ण नारायण ही परम सत्य है उनका ध्यान किया गया, तो इतने लंबे चौड़े व्याख्यान से विषय को जटिल बना दिया गया। सत्य और श्री कृष्ण में जब भेद ही नहीं है तो सत्यम परम धीमहि की जगह कह देते कृष्णम परम धीमहि। श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं तब ये संदेह का अवसर ही नहीं रहता, फिर सत्यम परम धीमहि कहने का क्या तात्पर्य है। भगवान व्यास किस ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं? भागवत का। तो मंगलाचरण में ही भागवत धर्म को प्रमाणित कर रहे हैं। भागवतों का धर्म क्या है? भागवतों का सिद्धांत क्या है? भागवतों का सिद्धांत यह है कि समस्त जितने वैष्णव हैं भागवत हैं, वे सब चार चीजों को नित्य मानते हैं, भगवान नाम रूप लीला और धाम, इन चारों को परम सत्य मानते हैं। तो इन चारों को परम सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान नाम भगवत रूप भगवत लीला भगवत धाम ये चारों परम सत्य हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए सत्यम परम धीमहि व्यास जी कह रहे हैं, यही वैष्णवों का सिद्धांत है। आप लोग कहेंगे क्या भगवान के नाम रूप में उसकी महिमा में कुछ अंतर आ रहा था क्या? अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? जो लोग वस्तुतः ज्ञानी हैं नहीं, जे ज्ञान मान विमत, ज्ञानी नहीं है, जे ज्ञान मान विमत भव भय हरनि भक्ति न आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञानमान विमत, जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं, ऐसे जो ज्ञानी नहीं है, वस्तुतः वे ज्ञान के गुमानी हैं, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान के गुमानी हैं, ज्ञान का गुमान उनके भीतर है, वस्तुतः ज्ञान उनके भीतर नहीं है, तो वे लोग निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता को परम सत्य के रूप में प्रमाणित करते करते भगवान जाने क्या भगवान की प्रचंड माया उन्हें भ्रम हो गया, या भ्रम की चर्चा करते करते वे भ्रम में पड़ गए, ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने सगुण साकार को भी मायिक मान लिया, माया सवलित मान लिया, और सगुण साकार माया सवलित है और सिद्धांत है, यद यद नाम यद यद रूपम तत्तन मिथ्या, जहां जहां जो जो नाम है जो जो रूप है वह सब मिथ्या है, ये बाकी असत्य नहीं है, ये बाकी ठीक है। संसार के सभी नाम रूप नाशवान होने के कारण मिथ्या है, लेकिन इसका तात्पर्य यह थोड़ी है कि भगवान का नाम मिथ्या हो जाए, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप मिथ्या हो जाए, इसका तात्पर्य नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत मानने वालों ने थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगा दी, और अधिक बुद्धि का प्रयोग जब उन्होंने कर दिया तो उन्होंने कहा कि जो नाम रूप है वो मिथ्या है, क्या नाम रूप के चक्कर में पड़ना, नाम रूप छोड़ो, सीधे बस सोहम अस्मि, अपनी निर्विशेष सत्ता का ध्यान करो, उसी में स्थित हो जाओ। सोहम अस्मि वाक्य भी गलत नहीं है, ठीक है, वैदिक वाक्य है, लेकिन उसको गलत ढंग से ले लिया। वे भगवान राम कृष्ण की शरणागति से, भक्ति से, भगवान की उपासना से विमुख होने लग गए। भगवान व्यास उन ज्ञान के मान में विमत जो गुमानी हैं, उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं, भाई ये संसार के नाम रूप मिथ्या हैं भले ही, लेकिन जगत में होने वाले भगवान के समस्त अवतार सत्य हैं, भगवान के समस्त रूप सत्य हैं, भगवान की समस्त लीलाएं सत्य हैं, और भगवान का धाम भी सत्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का देह सच्चिदानंदमय है, सप्त धातु विनिर्मित जैसा हम आपका शरीर है ऐसा भगवान का शरीर नहीं है, सच्चिदानंद घन भगवान है। उनका नाम रूप लीला धाम यह सत्य है, इतना ही नहीं, इन चारों में से किसी एक की भी अनन्य निष्ठा पूर्वक उपासना करने वाले भक्त भी सत्य हैं। हमारे वृंदावन में एक महान संत थे जिनकी चर्चा भी एक दिन हमने किया था कि वे अंतिम स्थिति में थे, और उन्होंने कहा भजन की तीन ही बातें हैं, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो। एक बार उनके निकट गए तो वे भाव विह्वल स्थिति में थे, और उन्होंने एक बात बताई, बोले कि देखो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं वे भगवान के जैसे ही नित्य हैं। पता नहीं किस भावावेश में थे, बहुत विह्वल स्थिति में थे, और उन्होंने कहा कि आज बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सत्संग प्राप्त हो, तो अभी अभी इसी खटिया पर बैठकर एक घंटे राम कथा सुना के गोस्वामी जी गए हैं। हो सकता कोई ऐसे अनधिकारी बैठे हों जिन्हें विश्वास न हो, लेकिन दास को तो विश्वास है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान के भक्त नित्य होते हैं। कितने भक्तों को इस कलयुग में मीरा का दर्शन प्राप्त हुआ, इस वर्तमान साधन के समय मीरा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, कबीर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री अवध में एक संत थे परमहंस स्वामी राममंगल दास जी महाराज, गोकुल मुर वाले महाराज, उनको साक्षात गुरु नानक जी का दर्शन हुआ, उन्होंने नानक जी के सत्संग का विचार किया तो नानक जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहा कि अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो, बोले हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं। आज भी वहां चरणामृत सुरक्षित नानक जी का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त भी नित्य हैं। श्री व्यास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, आप नित्य किसी न किसी भक्त का ध्यान करते। एक दिन आपने श्री कबीर जी का ध्यान किया। कबीर जी का ध्यान करते आपको लगा कि कबीर जी रसिक भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त थे, रस में प्रवेश नहीं था। इतना भाव आते ही श्री प्रिया प्रियतम की जो दिव्य झांकी हृदय में प्रकट होती थी वो लुप्त तो हो गई। आप श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे और कहा कि भगवान क्या अपराध बन गया, श्री ठाकुर जी रूठ गए। आपने कहा किसी भक्त का अपराध कर दिया होगा, क्योंकि ये संत अपराध से ही रुष्ट होते हैं और वैसे तो रुष्ट होते ही नहीं। आपने बहुत सूक्ष्म विचार किया तो कहा भगवान हमने कबीर जी के प्रति ऐसा भाव किया, वे रसिक भक्त नहीं थे। कहते नहीं, जाकर क्षमा याचना करो। तो यमुना के तट पर वे पहुंचे और पहुंच करके व्यास जी का पद है, व्यासवाणी का पद है, कलि में साचो भक्त कबीर, कलि में साचो भक्त कबीर, पांच तत्व से जन्म न पायो काल न ग्रस्यो शरीर, कलि में साचो भक्त कबीर, जब ते राम नाम रति उपजी तब ते बुन्यो नचीर, कलि में साचो भक्त कबीर। तो कबीर जी को अंतर्धान हुए करीब 200 वर्ष हो चुका था और जब आपने पुकारा तो यमुना जी के जल से प्रकट हो गए कबीर जी। ओ व्यास जी महाराज दंडोत दंडोत करके हृदय से लगा लिया और कहा श्री ठाकुर जी ने उस काल के जीवों को जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता थी दास के भीतर प्रेरणा करके वो व्यक्त करा लिया। भगवान परिपूर्ण है तो भगवान का भक्त भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण की उपासना करने वाला अधूरा कैसे हो सकता है? संपूर्ण भाव और संपूर्ण रस भक्त के अंतःकरण में सहज प्रकट हो जाते हैं। आपका संदेह दूर हो गया और श्री कबीर जी फिर यमुना जी में गोता लगाए अंतर्धान। इसका तात्पर्य भक्त भी नित्य हैं। तो नाम रूप लीला धाम यह सत्य है और इनकी उपासना करने वाले भगवान के भक्त भी सत्य हैं। ये भगवान के इस परम सत्य को प्रमाणित करने के लिए, सगुण साकार को परम सत्य के रूप में प्रमाणित करने के लिए और यह भाव श्री व्यास जी ने दिया। यतः अस्य जन्मादिर भवति, अस्य जगतः, इस सृष्टि का, इस जगत का जन्म, उत्पत्ति और लय, ये तीनों कार्य जिसके संकल्प मात्र से हो जाते हैं। भगवान इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संसार में प्रत्येक कार्य के प्रति दो कारण होते हैं, लेकिन भगवान इस जगत के प्रति अकेले कारण है, इसलिए भगवान को ही मूल कारण कहा गया। मिट्टी के घड़े के दो कारण हैं, निमित्त कारण है कुलाल और उपादान कारण है मिट्टी, और निमित्त और उपादान दोनों कारण सर्वथा भिन्न है, कुलाल अलग है, मृत्तिका अलग है, लेकिन भगवान उपादान भी है और निमित्त भी है। उपादान वस्तु क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मुख्य उपादान वस्तु यही है। और विस्तार करते चले जाओ तो 24 हो जाते, 25 हो जाते हैं, और जितना विस्तार करते चले जाओ उतना विस्तृत हो जाते हैं, और 36 तक हो जाते, 32 तक हो जाते हैं, और मूल में पांच हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो इन पांचों तत्वों के रूप में भी परमात्मा ही है। पृथ्वी के रूप में भगवान ही सब जीवों का आश्रय बने हुए हैं। कम ब्रह्म खम ब्रह्म वेद में लिखा है, जल ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्भुजम चतुर्विधम। तो कहने का तात्पर्य है भगवान वैश्वानर रूप से भगवान ही विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है अग्नि के रूप से, पवन के रूप में भी भगवान ही है, सबका प्राण भगवान है, प्राण वायु के रूप में भगवान ही। तो इन पांच तत्वों के रूप में भी परमात्मा ही है और यही जगत की उपादान वस्तुएं, इनसे ही जगत ब्रह्मांड बना है। ये ब्रह्मांड और ये पिंड शरीर, ये दोनों इन पांच चीजों से ही बने भए हैं। तो इसलिए भगवान उपादान कारण भी है, और भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है, इसलिए भगवान निमित्त कारण है। निमित्त और उपादान कारण भगवान इस जगत के हैं, और वह भगवान अर्थेष्वभिज्ञः, वह भगवान सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अनुगत हैं। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहां भगवान की सत्ता विद्यमान न हो, सर्वत्र भगवान विद्यमान है। चेतन के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान तो है ही, अचेतन के भीतर भी विराजमान है। जीवित के भीतर तो विराजमान है ही है, मरे हुए के भीतर भी बैठे हैं। आप लोग कहेंगे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मरे हुए के भीतर कैसे बैठे हैं? यदि मरे हुए के भीतर भगवान न होते तो बेन तो मर गया था, उसके शरीर का मंथन किया, ऋषियों ने कहा प्रभो अवतार लो, तो मृत बेन के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हो गया। भगवान नहीं थे तो आए कहां से? मृत शरीर से भगवान ने अवतार ले लिया। माने कहने का तात्पर्य, कोई ऐसा स्थल नहीं जहां भगवान न हो, बस पुकार है भक्त प्रेम से, भगवान वहीं प्रकट होकर के, क्योंकि विभु हैं, व्यापक हैं। विभु कहते ही उसे हैं जो व्याप्त हो। यस्मिन निदम ओत प्रोदम विश्वम साटीव तंतुसु, जैसे साटीव, जैसे साड़ी, माताएं साड़ी पहनती हैं, तो साड़ी में क्या है, धागे धागे तो हैं, आड़े तिरछे सब धागे धागे हैं। धागा अलग अलग कर दो तो धागे से अलग कोई साड़ी हो सकती है क्या? धागों के समुदाय को ही साड़ी कहते हैं। जैसे साड़ी में धागे ओतप्रोत हैं, ऐसी संसार की समस्त वस्तुओं में भगवान ओतप्रोत हैं। सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अनुगत हैं, और आश्चर्य तो ये है कि असत में रहते हुए भी असत के दोष उनमें व्याप्त नहीं है। अचित प्रकृति के भीतर भी हैं, लेकिन प्रकृतिगत दोष भी परमात्मा में व्याप्त नहीं है, और चेतन जीवगत दोष भी परमात्मा में व्याप्त नहीं है। प्रकृतिगत दोष और जीवगत दोष, अचितगत दोष और चितगत दोष, ये दोनों परमात्मा में व्याप्त नहीं है। कैसे? कहते जैसे शरीर के दोष, शरीर के धर्म आत्मचेतन में व्याप्त नहीं होते, ऐसे ही चित और अचित शरीर हैं और भगवान शरीर ही हैं। यह चित अचित का दोष भगवान में व्याप्त नहीं होता, शरीर शरीरी भाव के दृष्टांत से। भगवान स्वप्रकाश है, स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश हैं, अपने आप सुशोभित हो रहे हैं। भगवान को विराजित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सूर्य में प्रभा, चंद्रमा में शीतलता, नक्षत्र तारामंडल में प्रकाश उनके द्वारा प्राप्त होता है, वे सबके प्रकाशक हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रकाशक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबका परम प्रकाश परमात्मा, सबके परम प्रकाशक हैं, लेकिन भगवान का कोई प्रकाशक नहीं है। ऐसे भगवान हैं, स्वयं प्रकाश हैं। भगवान अपने आप सुशोभित हैं। कुछ रसिकों ने तो यहां तक भाव दिया गया है, दिया है कि श्री ठाकुर जी का मंगलमय श्रीअंग इतना मनोहर और लावण्य से परिपूर्ण है कि उसका निरावृत दर्शन प्रेमी जन सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके श्रीअंग के सौकुमारी को ढकने के लिए वस्त्र और आभूषण है, सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं। उनके ललित श्रीअंग का दर्शन सहन नहीं कर सकते, इतना ललित है, इसलिए उसको ढकने के लिए पीतांबर ओढ़ा देते हैं, धोती पहना देते हैं, आभूषण धारण करा देते हैं। ऐसा श्रीअंग में सौकुमारी है, भगवान की शोभा को ढकते हैं वो। स्वाभाविक शोभा को ढक लेते हैं वस्त्राभूषण, और ढक तो भले ही लेते हैं लेकिन वस्त्राभूषण उनके श्रीअंग पर पहुंच करके कृतार्थ हो जाते, कृतकृत्य हो जाते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। श्रीअंग में पहुंचने के बाद मुकुट की शोभा, पीताम्बर की शोभा, कटिकाछनी की शोभा और उनके नूपुर की शोभा, आभूषणों की शोभा बढ़ती है। ये तो स्वतः शोभायमान है, स्वराट, स्वराट शब्द करते हैं, अपने आप सुशोभित हो रहे हैं, अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं। और उनकी सामर्थ्य इतनी अचिंत है कि आदि कवि श्री ब्रह्मा जी को अपने हृदय के संकल्प मात्र से उन्होंने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े शूरी जहां मोहित हो जाते हैं ऐसे वेद के ज्ञान को श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से प्रदान किया। संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी ने प्रदान कर, भगवान ने प्रदान कर दिया वेद का ज्ञान। वस्तुतः अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से संभव नहीं है ज्ञान, वेद का ज्ञान ही नहीं ज्ञान। शब्दावली को तो कंठस्थ किया जा सकता है लेकिन जिस अपरोक्ष ज्ञान से जीव को परम लाभ मिलेगा वह ज्ञान भगवद अनुग्रह से ही संभव है। तो भगवान ने अनुग्रह किया और ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ऐसी प्रसिद्धि है लोक में कि रावण भी बहुत बड़ा वेद का विद्वान था लेकिन वेद का विद्वान नहीं था, वैदिक शब्दावली का ज्ञाता था, वैदिक शब्दावली का बोध था उसे, वेद का बोध नहीं था। क्योंकि वेद का बोध होता तो वेद वेद्य तो भगवान है, भगवान में प्रीति बढ़ती, सत्य शौच सदाचार उसके जीवन में प्रतिष्ठित होता, उसका चरित्र आदर होता। लेकिन नहीं, उसे केवल वैदिक शब्दावली कंठस्थ थी, उसे वेद का बोध नहीं था। क्योंकि वस्तुतः बोध जो होता वो भगवान के अनुग्रह से होता, भगवान की कृपा से होता। भगवान ने कृपा किया और ब्रह्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। इस मंगलाचरण की टीका में श्रीधर स्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया है। वे कहते हैं कि वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने वैदिक ज्ञान का आश्रय लेकर के सृष्टि का विस्तार किया। वेद के अनुकूल ही सृष्टि है, वेद पहले हैं और सृष्टि बाद में है। वेद में जिस वस्तु का जैसा निरूपण किया गया उस वस्तु को उस रूप में ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया। वज्रहस्तो पुरंदर, वज्र बना दिया, इंद्र बना दिया, ऐसा ऐरावत हाथी है ऐरावत बना दिया, कल्प वृक्ष बना दिया। तो वैदिक शब्दों को देख करके ही उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। और सृष्टि जो है वो अनादि है क्योंकि महाप्रलय हुआ और फिर नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भए और फिर भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो कैसे किया? धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व कल्प में जैसी भगवान ने सृष्टि की थी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, उसी सृष्टि का स्मरण करके ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का विस्तार कर दिया। तो पूर्व कल्प में भी सृष्टि का विस्तार वैदिक ज्ञान का आश्रय लेकर किया होगा क्योंकि बिना वेद के ज्ञान के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। तो वेद के ज्ञान का आश्रय लेकर के ही सृष्टि का विस्तार किया, तब भगवान को प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में भगवान को ब्रह्मा जी को नए सिरे से वेद के ज्ञान को देने की क्या आवश्यकता पड़ी। सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से ब्रह्मा जी महाराज वैदिक ज्ञान का स्मरण कर लेते और सृष्टि रचना में प्रवृत्त हो जाते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी को ज्ञान देने की क्या आवश्यकता पड़ी, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान क्यों दिया, इसका उत्तर दे रहे मोहयन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े शूरी भी वेद के संबंध में मोहित हो जाते हैं। सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से जैसे वस्तु को जाना जा सकता, वेद को इस रीति से इस पद्धति से नहीं जाना जा सकता। जब जब वह ज्ञान धूमिल हो जाता है तो भगवान तरोताजा ज्ञान नवीन ज्ञान वेद का ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं कि ब्रह्मा जी को पोथी लाना पड़ती हो तब भगवान कुछ दिन पढ़ाते हो, ऐसा नहीं। हृदय हृदय के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं। भगवान के भक्त में समस्त ज्ञान भगवान के अनुग्रह से प्रकट हो जाता है। दक्षिण में एक महापुरुष थे रामानुज संप्रदाय के, वे निम्न कुल के थे, अंत्यज थे जाति से, भगवान का नाम उच्चारण करते रहते थे निरंतर। एक दिन वे जा रहे थे, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, श्रौत यज्ञ। उन सबने सोचा कि अरे इसके सामने वेद मंत्र पढ़ना ठीक नहीं, वो सब मौन हो गए। और वे सब जैसे ही मौन हो गए कि सबको वेद भूल गया। अब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो ब्रह्म गायत्री भी भूल गए, संध्या वंदन के मंत्र ही भूल गए, हमारे तो कर्म का ही लोप हो गया, क्या करें। आखिर विद्वान थे, कौन बता इसको ठीक करें। तो चले उन संत को मना में, भक्तापराध हो गया। वो ब्राह्मण यज्ञशाला से चल पड़े उन संत के पीछे पीछे। वो धान की खेत की मेड़ पर जा रहे थे, महाराज प्रणाम दंडवत। आपने देखते ही ब्राह्मण की मंडली को पृथ्वी पर लोट कर साष्टांग दंडवत किया। भगवान मैं अंत्यज हूं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप आज्ञा करें, आप कैसे आपने दास का स्मरण किया। बोले महाराज हम तो वेद विस्मृत हो गए, हमारी ब्रह्म विद्या गायत्री भी भूल गई हमको, हम क्या करें, ये धर्म का लोप हो रहा है, आप रक्षा करें। आप हंसने लगे और उन्होंने कहा कि देखो भगवान श्रीमन नारायण के अनुग्रह से हमारे हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान प्रकाशित है, सब कुछ हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है, मैं उपदेश का अधिकारी नहीं हूं, मैं उपदेश नहीं कर सकता। हमें आप लोगों के कर्म से कोई प्रयोजन नहीं था, हम तो सामान्य भाव से जा रहे थे, आप लोगों ने वेद का उच्चारण बंद कर दिया तो उससे हमें कोई क्लेश भी नहीं हुआ, ये तो भगवान की लीला है, इसे भगवान ही जाने, हम इस संबंध में कुछ नहीं समझते और हम अंत्यज हैं, उपदेश आप ब्राह्मणों को कर नहीं सकते। महाराज फिर कुछ तो समस्या का समाधान कीजिए। तो वे प्रसन्न हो गए और धान के खेत से एक मुट्ठी धान उखाड़ के ऐसे दिखाया, उस सबको वेदों का ज्ञान पुनः स्मृति स्मरण में आ गया, क्योंकि जिस मंत्र से उन्होंने बंद किया था बोलना आगे, उस मंत्र के प्रारंभ में व्रीह शब्द था, धान्य शब्द था, तो जैसे ही धान को दिखाया वो सबको वेद पुनः स्मरण में आ गया। इसका तात्पर्य है भगवान संकल्प करें तो ज्ञान हो जाए, और कोई भगवान के प्राण प्यारे समर्थ संत संकल्प करें तो संकेत में ज्ञान हो जाए, बोलने की भी जरूरत नहीं है, संकेत में ज्ञान हो जाए। भगवान के भक्त संकेत में ज्ञान दे देते हैं, संकेत में, संकेत की भी आवश्यकता नहीं, समर्थ पुरुष एक करुणा भरी दृष्टि से किसी जीव की ओर देख दें तो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं है जैसे लोक की वस्तुओं को, लौकिक जगत की बातों को हम सुप्त प्रतिबुद्ध न्याय से समझ लेते हैं, सो गया और सोने के बाद फिर जगा तो सोने के पूर्व जो कुछ विचार किया वो सबका स्मरण रहता है। संसार की बातों को जैसे स्मरण किया जा सकता ऐसे ज्ञान नहीं संभव है। वस्तुतः ज्ञान तो भगवान और भगवान के भक्त के अनुग्रह से ही होता है। भगवान ने अनुग्रह किया और ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। तेजोमय रश्मियों में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है। यह जगत परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या कहा जाता है। तीन प्रकार की सृष्टि है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूपा जो सृष्टि है इसका अधिष्ठान परमात्मा है और अधिष्ठान सत्य है। तो जब अधिष्ठान सत्य है तो अधिष्ठान में अधिष्ठित वस्तु असत्य नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य है कि जब जगत को जगत के रूप में जब हम देखते हैं तो वो परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या है, और जब हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, हरि ही जगत है जगत ही हरि है, इस प्रकार से जब भगवानमय दृष्टि से जगत को देखते हैं तो वह मिथ्या नहीं रह जाता, वो भगवान का लीला विलास बन जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान का चिद विलास जगत को कहा, लीला विलास चिद विलास जगत को भगवान का स्वीकार किया है। वैष्णव को यही अपनी दृष्टि में परिवर्तन करना है, हृदय में ऐसा भाव जगा ले कि छोटे बालक जहां खेल रहे हो वहां बालकृष्ण का दर्शन हो, श्री वृषभानुनंदिनी का दर्शन हो, बड़ों में बूढ़ों में बच्चों में सब में भगवान का अनुभव होने लग जाए, संसार की जो वस्तु दिख है उसमें भगवान का अनुभव। श्री मन महाप्रभु जी नीलाचल धाम में विराजते, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, और उनके भाव राज्य का भाव इतना उत्कृष्ट था कि उस उत्कृष्टतम भाव के कारण जो टोड़ा गोपीनाथ जी हैं, वे टोड़ा गोपीनाथ जी ही उनके लिए नित्य वृंदावन प्रकट हो गया। महाप्रभु जी के भाव में वो वृंदावन था और वहीं उनको वृंदावन की लीला का आस्वादन होता है। उस क्षेत्र में आज भी वो वन्य प्रदेश है, वहां महाप्रभु जी को वृंदावन का दर्शन होता, और वहां जो टीला है पर्वत है वो गिरिराज जी के रूप में दिखाई पड़ते, और वहां जो प्रवाहमान जो नाला है झरना है वो यमुना जी के रूप में उन्हें दिखाई पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का लीला विलास जगत है, ऐसा प्रेम जागृत हो जाए कि हमें सर्वत्र भगवान से संबद्ध भगवान का लीला क्षेत्र ही दिखाई पड़े, उसका अभाव चित्त में न हो। इस जगत भगवान का लीला विलास है, सबके भीतर बैठकर खेलने वाले भगवान ही हैं, उन भगवान का अनुभव होने लग जाए। ऐसे जो भगवान हैं जिनकी सत्ता से यह जगत भी सत्य है, वह भगवान अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वथा माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त हैं, निरस्त कुहकम, अविद्या माया के कार्य से सर्वथा मुक्त हैं। ऐसे जो सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका हम सब ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है, अधिकारी च संबंधा विशिष्ट प्रयोजनम, अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन, इसका निरूपण है दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का विवेचन किया गया, धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदय विरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का विवेचन किया गया। परम धर्म का स्वरूप क्या है? सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। भगवान में प्रीति बढ़े, भगवान में प्रेम बढ़े, और भगवान में प्रेम कब बढ़ेगा? जितनी जितनी संसार के प्रति भोगों के प्रति अनासक्ति होती चली जाएगी उतनी ही उतनी अधिक भगवान में आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। सिद्धांत है, जिनकी सर्वांश में आसक्ति समाप्त हो चुकी है उनकी परिपूर्ण प्रीति उनकी परिपूर्ण आसक्ति भगवान के चरण कमलों में हो जाती है। शिनमार्क भगवान ने अपने सिद्धांत में आसक्ति को प्रधान माना, इसलिए संतों में कहावत है निम्बारक आसक्ति, आसक्ति को प्रधान माना। आसक्ति का मतलब है प्रियालाल में इतनी आसक्ति हो जाए, इतनी आसक्ति हो जाए, और ये आसक्ति तब होगी जब जगत से भोगों से अनाशक्ति होगी, तब इधर आसक्ति होगी। भगवान में प्रीति बढ़ जाए, भगवान में अपनापन हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, उसी का नाम है परम धर्म। और वह परम धर्म कैसा? प्रोज्झित कई तवोत्र परमो धर्म निरूपिता अत्र अस्मिन् प्रकृत ग्रंथे प्रकर्षेण उज्झिता कैतवः कपट लक्षणो धर्मः कपट लक्षण वाला धर्म जहां नहीं है ऐसा परम धर्म का विवेचन भागवत में हुआ है। बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, धर्म में भी कोई कपट होता है क्या? व्यास जी कह रहे हैं कपट रहित परम धर्म का विवेचन भागवत में, सर्वथा निष्कपट परम धर्म का विवेचन भागवत में हुआ है। धर्म का कपट क्या है? धर्म की महिमा और धर्म का अंतिम फल यही है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। और श्वे श्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धि लभते नर, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में व्यवस्थित रूप से जो निर्वाह करते हैं उन्हें संसिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान की अतिशय सरलता पूर्वक प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब धर्म का आचरण निष्काम भाव से नहीं होता है, धर्म का आचरण जब हम करते हैं लेकिन धर्म का फल अविद्या की निवृत्ति, संसार चक्र से छुटकारा, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति जब धर्म का फल नहीं होता, धर्म का फल जब लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित हो जाता है तो वह धर्म कपट युक्त हो जाता है। यही धर्म का कपट है। धर्म का फल है ठाकुर जी की प्राप्ति हो, ठाकुर जी तो मिले नहीं अब बस इधर उधर अटक के भटक के रहे, बड़े बड़े वैदिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं निष्काम भाव से नहीं, धर्म का आचरण कर रहे हैं निष्काम भाव से नहीं। भाव क्या है? पंडित जी ऐसा संकल्प बोलिए कि जिसमें सब कामनाएं आ जाएं हमारी, हमें केवल भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरण कमलों में अनुराग प्राप्त हो, भोगों से अरुचि हो, इसके लिए कभी संकल्प हम लोग नहीं बोलते, न संकल्प भीतर से करते हैं ना क्रिया रूप में उसको बोलते हैं। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम्, प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम्, लोके सभायाम राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम्। और इतना ही नहीं, अस्मत कुंडल्याम ये केचिद विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितं संसूचि सिमानंचित सर्वारिष्टम तद विनाशन द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम्। कुंडली में सारी कुंडली ही बदल दो, भगवान हम पूजा तो आपकी कर रहे हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी कृपया कुंडली बदल दें, जो चौथे आठवें बारह खराब ग्रह बैठे हैं उनको तो फल समाप्त कर दें, और ग्यारहवां स्थान है लाभ का, वो लाभ हमको दे दें। अरे भाई, जिसे हम लोग लाभ माने बैठे वही सबसे बड़ी हानि है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम, आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, अर्थम अनर्थम भावय, रोज उठ करके चिंतन करो, अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। सुख नहीं, सुख का लेश भी उससे नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने लाभ कैसे समझ रखा है? संपत्ति की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति को लाभ समझ रखा है। भोग की प्राप्ति कभी लाभ नहीं है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, भगवान की भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है? भगवान में प्रीति बढ़ जाए इससे बड़ा भी कोई लाभ है क्या? लेकिन भगवान की प्रीति की बात हम नहीं स्वीकार करते हैं। हमें तो संसार की वस्तुएं ही अच्छी लगती हैं और उन्हीं की प्राप्ति में लाभ का अनुभव हो रहा है, यही धर्म का कपट है। ऐसे सकाम धर्म का विवेचन भागवत में नहीं हुआ, निष्काम धर्म का विवेचन हुआ है। देखिए बात ऐसी है, निष्काम होने पर भी जो वस्तु आपके प्रारब्ध के अधीन प्राप्त होना निश्चित है वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त होगी, और उस वस्तु की प्राप्ति होने पर भी चित्त अशुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध बना रहेगा। ये निष्काम भाव की ये महिमा है। और कामना करने पर, इच्छा करने पर भी वही वस्तु प्राप्त होगी जो आपके प्रारब्ध के अधीन होकर मिलना निश्चित है, वही वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन वस्तु की प्राप्ति भले ही विलंब से हो, चित्त अशुद्ध पहले हो जाएगा। कामना आई नहीं कि चित्त अशुद्ध हो गया, और जब चित्त अशुद्ध हो जाएगा तो अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को जब कोई वस्तु आसक्ति पूर्वक उस वस्तु को चाहेगा वो मिलेगी, उस वस्तु के प्रति ममता, लोलुपता, अतृष्णा आदि सारे अविद्या के परिवार के दोष एक साथ धावा बोल देंगे, जीव की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि निष्काम भाव को स्वीकार कर ले। जिसे कुछ पाना है, जिसे कुछ संसार की वस्तु चाहिए, वो अशांत रहेगा। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सर्वदा शांत रहेगा। बात थोड़ी सी खरी है लेकिन सही बात यही है, भगवान अपनी ओर से कृपा करके जो परमार्थ करा लेवे, वह कामना भगवान की ओर से जो कामना हो वो से करे। अपनी ओर से की गई परमार्थ की कामना भी भगवत प्राप्ति में बाधक है, भगवान से विमुख कराने वाली है। बिना संकल्प के, बिना याचना के, बिना कामना के जो वस्तु आपके निकट आ जाए उससे ठाकुर जी की सेवा करें, संत की सेवा करें, गौ की सेवा करें, अतिथि का सत्कार करें, पिता माता की सेवा करें और दीन दुखी दरिद्रों की सेवा करें, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि यह कामना चित्त में की गई तो भी भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसी बड़ी योजना भजन में लगे हुए साधकों को नहीं करनी चाहिए जिसके कारण वे परमार्थ के सर्वोत्तम लाभ से वंचित हो जाएं। भगवान सहज जो करा ले में उसे स्वीकार कर ले, अपनी ओर से कोई संकल्प न करे। ऐसे परम धर्म का विवेचन भागवत में हुआ है जहां कामना की गंध नहीं है। आप लोग कहेंगे कि यह अर्थ तो उज्जित कैतव शब्द से भी प्रकट था, प्र उपसर्ग क्यों लगाया? तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इसकी टीका में, प्र उपसर्गे नात्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। प्र उपसर्ग लगाकर मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य है लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना तो नहीं ही हो, नहीं ही है भागवत में, मोक्ष तक की कामना से शून्य धर्म का विवेचन भागवत में। मोक्ष की भी कामना जहां नहीं है, मोक्ष तक की कामना। इसका तात्पर्य है कि इनकी स्पृहा का त्याग, केवल भगवत प्रेम को अंगीकार करना, भगवत प्रेम को, और भगवान के प्रेम की प्राप्ति वस्तुता होती उन्हीं को है। सर्वथा निष्काम भाव से धर्म का आचरण करते हुए भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जब ये बात भीतर से आ जाए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। विशुद्ध भगवत रति का, भगवत प्रेम का निरूपण श्रीमद् भागवत में हुआ है। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमा, ऐसे परम धर्म का निरूपण हुआ है। और विशुद्ध अंतःकरण वाले जो महापुरुष हैं, विशुद्ध अंतःकरण वाले कौन है, जो सर्वथा निष्काम है। सर्वथा निष्काम विशुद्ध अंतःकरण वाले जो सत्पुरुष हैं, उनके द्वारा वेद्य जो तत्व है उस तत्व का निरूपण हुआ है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इस तत्व का निरूपण हुआ है जिस तत्व के बोध से ही त्रिविध ताप का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। परम कल्याण जीव का हो जाता है। अब कहते किंबा परई ही, अब अन्य साधनों से प्रयोजन क्या है, क्योंकि दूसरे साधनों में ऐसी योग्यता नहीं है, दूसरे साधनों में ऐसी पात्रता नहीं है कि वे साधन भगवान को हृदय में अवरुद्ध कर दें। वे साधन तो केवल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक ही सीमित हैं, अधिक तक उनकी गति ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूप साधन के तुल्य कोई दूसरा साधन नहीं है। किंबा परई ही अन्य साधनों से प्रयोजन क्या है, क्योंकि अन्य कोई साधन ऐसा नहीं जिसका आश्रय लेने से भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएं। और ये भागवत कैसा साधन है, कहते सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हृदय में आकर भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। किसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, सुनने वालों के हृदय में नहीं, शुश्रूषु भी। इसका तात्पर्य श्रवणेक्षु भी, अभी सुना नहीं, केवल श्रवण की अभिलाषा उत्पन्न हो गई भीतर, वो भगवान आकर डेरा जाल डाल देते हृदय में। ऐसी महिमा भगवान की कथा की है, श्रवण का संकल्प होते ही भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। सुना नहीं अभी, केवल सुनने का संकल्प किया और ठाकुर जी हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसा साधन कौन सा है, जिस साधन से ठाकुर जी हृदय में आके कैद हो जाएं, निरुद्ध हो जाएं। अब हमें अन्य किसी साधन से प्रयोजन नहीं है। लेकिन शुश्रूषु भी का विशेषण है, क्या विशेषण है, शुश्रूषु भी का विशेषण है कृति भी।